श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अथ सप्तदशोध्याय, सत्रवां बाब। बाब 16 के आखिर में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने साफ तौर पर कहा कि ख्वाहिश, गुस्सा और लालच को तर्क करने के बाद ही अमल की शुरुआत होती है, जिसे मैंने बार बार कहा है। मुअय्यना अमल को किए बगैर ना तो आराम, ना कामयाबी और ना आला नजात ही हासिल होती है। इस वास्ते अब तेरे लिए क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है कि इंतजाम में कि क्या करूं क्या ना करूं, इसके मुतालिक शरीयत ही सबूत है, कोई दूसरी शरीयत नहीं, बल्कि इति गुह्यतम शास्त्रमिदम, यानी ये राज भरी वाहिद शरीयत है, गीता खुद शरीयत है। दूसरे शरीयतें भी हैं, लेकिन यहां इसी गीता शरीयत पर नजर रखें, दूसरे की तलाश ना करने लगें। दूसरी जगह तलाश करेंगे तो यह सिलसिला बंदी नहीं मिलेगी, लिहाजा भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने सवाल खड़ा किया कि बंदा नवाज, जो लोग शरीयत के तरीके को तर्क कर पूरी अकीदत के साथ यजंते यानी यज्ञ करते हैं, उनका अंजाम कैसा है? मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम वाला है? क्योंकि पहले अर्जुन ने सुना था कि चाहे आप मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम के हामिल हो, जब तक सिफात मौजूद है, किसी ना किसी शक्ल यानी योनि की ही वजह होते हैं। लिहाजा पेश करदा बाप की इब्तिदा में ही उसने सवाल खड़ा किया। अर्जुन उवाचा,
ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः।
ऐ श्री कृष्ण, जो इंसान शरीयत का तरीका तर्क कर अकीदत के साथ यज्ञ करते हैं, उनका अंजाम कौन सा है? मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम वाला है? यज्ञ में देवता, यक्ष, जानदार वगैरह सभी आ जाते हैं। श्री भगवान वाचा,
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु।
बाब 2 में जोग के मालिक ने बताया था कि अर्जुन, इस जोग में मुअय्यना अमल एक ही है। जाहिलों की अक्ल बेशुमार शाखों वाली होती है, लिहाजा वो बेशुमार तरीके का फैलाव कर लेते हैं, दिखावटी आरास्ता जबान में उसका इजहार भी करते हैं। उनकी बातों का असर जिनकी तबीयत पर पड़ता है, अर्जुन, उनकी भी अक्ल गुम हो जाती है, ना कि कुछ हासिल कर पाते हैं। ठीक इसी को यहां पर भी दोबारा कहा गया है कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य शरीयत के तरीके को तर्क कर याद करते हैं, उनकी अकीदत भी तीन तरह की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, इंसान की आदत से पैदा हुई वो अकीदत मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया, वो मलकाते मजमूम से मुजयन, ऐसी तीन तरह की होती हैं, उसे तू मुझसे सुन। इंसान के दिल में ये अकीदत मुसलसल तौर पर कायम है।
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः।
ऐ भारत, सभी इंसानों की अकीदत उनके तबीयत के खसाइल के मुताबिक होती है। ये इंसान अकीदत मंद है, लिहाजा जो इंसान जैसी अकीदत वाला है वो खुद भी वही है। आम तौर से लोग पूछते हैं, मैं कौन हूं? कोई कहता है मैं तो रूह हूं, लेकिन नहीं, यहां जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी अकीदत जैसी खसलत वैसा इंसान। गीता इल्म रियाजत है। वली पतंजलि भी जोगी थे, उनका जोग का फलसफा योग दर्शन है। जोग है क्या? उन्होंने बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तबीयत के कारोबार का पूरी तरह रुक जाना जोग है। किसी ने मशक्कत करके रोक ही लिया तो फायदा क्या है? तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम्, उस वक्त ये नाजिर जी रूह अपनी ही हकीकी शक्ल में कायम हो जाती है। क्या कायम होने से पहले ये दागदार थी? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, दूसरे वक्त में जैसी खसलत की शक्ल है वैसा ही वो नाजिर है। यहां जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंसान अकीदत मंद है, अकीदत से लबरेज है, कहीं ना कहीं अकीदत जरूर होगी, और जैसी अकीदत वाला है वो खुद भी वही है, जैसी खसलत वैसा इंसान। अब तीनों तरह के अकाइद को तकसीम करते हैं।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।
उनमें से मलकाते फाजिला के हामिल इंसान देवताओं की इबादत करते हैं, मलकाते रद्दिया के हामिल यक्ष और देवों की यानी राक्षसों की इबादत करते हैं, और मलकाते मजमूम के हामिल इंसान आसेब और शैतानों की इबादत करते हैं। वो इबादत में बेतकान मशक्कत भी करते हैं।
अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः।
वो इंसान शरीयत के तरीके से खाली बेहद तकय्युलाती यानी ख्याली तरीकों को तख्लीक कर रियाजत की मश्क करते हैं, तकब्बुर और गुरूर के हामिल, ख्वाहिश और रगबत के डोर से बंधे हुए।
कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः मां चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान।
वो जिस्म की शक्ल में मौजूद तमाम जानदारों को और बातिन में मौजूद मुझ आलिमुल गैब को भी कमजोर करने वाले हैं, यानी नातवा करने वाले हैं। रूह दुनियादारों में फंसकर उयूब से कमजोर और यज्ञ के वसीलों से मजबूत होती है। उन जाहिलों यानी बेहिस लोगों को यकीनी तौर पर तू शैतान जान, यानी वो सब के सब शैतान हैं। सवाल पूरा हुआ। शरीयत के तरीके को तर्क कर याद करने वाले मलकाते फाजिला के हामिल इंसान, देवताओं की मलकाते रद्दिया के हामिल यक्ष और देवों की, और मलकाते मजमूम के हामिल इंसान आसेब की इबादत करते हैं। सिर्फ इबादत ही नहीं, रियाजत के लिए सख्त मशक्कत भी करते हैं। लेकिन अर्जुन, जिस्मानी शक्ल से जानदारों को और आलिमुल गैब शक्ल से मौजूद रूह पाक को कमजोर करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि इबादत करते हैं। उनको तू शैतान जान, यानी देवताओं की इबादत करने वाले भी शैतान ही हैं। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा। लिहाजा जिसके ये सभी महज जुज हैं, उस वाहिद माबूद को याद करें। इसी पर आला जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बार बार जोर दिया है।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं श्रृणु।
अर्जुन, जैसे अकीदत तीन तरह की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी खसलत के मुताबिक गिजा भी तीन तरह की पसंद होती है, और वैसे ही यज्ञ, रियाजत और सदका भी तीन तीन तरह के होते हैं। उनके किस्मों के बारे में तू मुझसे सुन। पहले पेश है खुराक।
आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रित्या आहारा सात्विक प्रिया।
उम्र, अक्ल, ताकत, तंदुरुस्ती, आराम और मोहब्बत का इजाफा करने वाली लजीज चिकनी और कायम रहने वाली और खसलत से ही दिल को पसंद आने वाली खाने की चीजें मलकाते फाजिला के हामिल इंसान को पसंद आती हैं। जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक खसलत से दिल को पसंद आने वाली ताकत, तंदुरुस्ती, अक्ल और उम्र बढ़ाने वाली खाने की चीज ही सालेह है। जो खुराक सालेह है, वही सालेह इंसान को पसंद आती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी खुराक मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम वाली नहीं होती। उनका इस्तेमाल मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम वाला हुआ करता है। ना दूध मलकाते फाजिला है, ना प्याज मलकाते रद्दिया, और न लहसन मलकाते मजमूम से मुजयन है। जहां तक ताकत, अक्ल, तंदुरुस्ती और दिल को पसंद आने का सवाल है, तो दुनिया भर में इंसानों को अपनी अपनी खसलत, माहौल और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ खाने की चीजें पसंद होती हैं। जैसे बंगाली और मद्रासियों को चावल पसंद होता है, और पंजाबियों को नान यानी रोटी। एक तरफ तो अरब के बाशिंदों को दुम्बा, चीन वालों को मेंढक, तो दूसरी तरफ ध्रुव जैसे ठंडे सूबों में गोश्त के बगैर गुजारा नहीं है। रूस और मंगोलिया के असल बाशिंदे खुराक में घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में रहने वाले गाय और सुअर यानी खिंजीर दोनों खाते हैं। फिर भी इल्म, अकल के इजाफे और तरक्की में अमेरिका और यूरोप के रहने वाले अव्वल दर्जे में शुमार किए जाते हैं। गीता के मुताबिक लजीज, चिकनी और टिकी रहने वाले खाने की चीजें साले हैं। लंबी उम्र, हस्बे जरूरत ताकत और अक्ल बढ़ाने वाली सेहतमंद खाने की चीजें साले हैं। कसरत के मुताबिक दिल को पसंद आने वाली खाने की चीजें साले हैं। लिहाजा कहीं किसी खाने की चीज को कमोबेश नहीं करना है। हालात, माहौल और मुल्की मुनासिबत के मुताबिक जो खाने की चीज मिजाज को पसंद आए और जीने के लिए तकवियत अता करे, वही साले है। कोई खाने की चीज मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया या मलकाते मजमूम के तासीर वाली नहीं होती। उसका इस्तेमाल मलकाते फाजिला, मलकाते रद्दिया, ख्वाह मलकाते मजमूम वाला होता है। इसी मुताबिकत के लिए जो लोग घर परिवार को तर्क कर सिर्फ माबूद की इबादत में डूबे हुए हैं, तर्क दुनिया की हालत यानी सन्यास आश्रम में है, उनके लिए गोश्त और शराब मतरूक है। क्योंकि तजुर्बे में देखा गया है कि ये चीजें रूहानी रास्ते के बरखिलाफ रुझान पैदा करती हैं, लिहाजा उनके जरिए रियाजत की राह से भटकने की ज्यादा गुंजाइश है। जो यकसुई की जिंदगी जीने वाले तारिकुद दुनिया हैं, उनके लिए जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बाप छे में खुराक के लिए एक उसूल दिया के युक्ताहार विहारस्य, यानी मुनासिब खाना पीना और तफरी, इसी के मद्देनजर बर्ताव करना चाहिए। जो याद इलाही में मददगार है उतनी वही खुराक लेनी चाहिए।
कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहाराराजसस्येषा दुःखशोकामय प्रदाः।
तल्ख, खट्टी, ज्यादा नमकीन, काफी गर्म, तीखी, रूखी, जलन पैदा करने वाली और तकलीफ देह, गम वो बीमारियों को जन्म देने वाली खुराक मलकात रद्दिया के हामिल इंसान को पसंद होती है।
यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चयत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।
जो खाना एक पहर यानी तीन घंटे से ज्यादा पहले का बना हुआ है, बेलज्जत, बदबूदार, बासी, झूठा और नापाक भी है, वो मलकाते मजमूम के हामिल इंसान को पसंद होता है। यानी सवाल पूरा हुआ, अब पेश है यज्ञ।
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः।
जो यज्ञ यानी विधि दृष्ट शरीयत के तरीके से मुकर्रर किया गया है, यानी जैसा पहले बाप तीन में यज्ञ का नाम लिया, उस बाप चार में यज्ञ की शक्ल बताई के बहुत से जोगी जान को रियाह में और रियाह को जान में हवन करते हैं। जान रियाह की हरकत पर काबू पाकर सांस की रफ्तार को साकिन कर लेते हैं, एहतियात की आग में हवन करते हैं। इस तरह यज्ञ के 14 जीने बताए, जो सब के सब भगवान तक की दूरी तय करा देने वाले एक ही अमल के ऊंचे नीचे जीने हैं। मुख्तसर में यज्ञ खुसूसी गौर फिक्र के तरीके कार की अक्कासी है, जिसका आखिरी नतीजा ابدی معبود میں داخلہ ہے جس کا طریقہ اس شریعت میں بتایا گیا ہے. اسی شریعت کے طریقے پر پھر زور دیتے ہیں کہ ارجن، شریعت کے طریقے سے معین کیا ہوا جسے کرنا ہی فرض ہے اور جو من پر بندش رکھنے والا ہے وہ سمرے کو نہ چاہنے والے انسان کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ یگیہ صالح ہے.
ابھی فلم دمبھارتھمپی چیویت ایجتے بھرت شریشت تم یگیم ویدھی راجسم.
اے ارجن، جو یگیہ محض خود ستائش کے لیے ہی ہو یا سمرے کو مقصد بنا کر کیا جاتا ہے اسے ملکات ردیہ کا یگیہ سمجھ یہ کارکن یگیہ کا طریقہ جانتا ہے. خود ستائش یا سمرے کو مقصد بنا کر کرتا ہے کہ فلاں چیز ملے گی اور لوگ دیکھیں گے کہ یگیہ کرتا ہے، تعریف کریں گے ایسا یگیہ کرنے والا. در حقیقت ملکات ردیہ کا حامل ہے. اب ملکات مذموم والے یگیہ کی شکل بتاتے ہیں.
विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते.
जो यज्ञ शरीयत के तरीके से खाली है, जो अनाज यानी माबूद की तखलीक कर सकने में खासिर है, من کے اندر قابو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نظر یعنی اپنا سب کچھ سپرد کر دینے سے آری ہے، اور جو عقیدت سے خالی ہے، ایسا یگ ملکات مضموم والا یگ کہا جاتا ہے. ایسا انسان حقیقی یگ کو جانتا ہی نہیں. اب پیش ہے ریاضت.
देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाच शारीरम तप उच्यते.
आला माबूद, रूहे मुतलक, शिर्क पर फतेह हासिल करने वाले यानी द्विज مرشد اور عالم حضرات کی عبادت، پاکیزگی، سیدھاپن، رہبانیت اور عدم تشدد، جسم سے تعلق رکھنے والی ریاضت کہی جاتی ہے. جسم ہمیشہ خواہشات کی طرف بہکتا ہے، اسے باطن کی مذکورہ بالا خصائل کے مطابق تپانا جسمانی ریاضت ہے.
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते.
बेकरारी ना पैदा करने वाली, अजीज, खैरख्वाह और हक बोलने, माबूद में दाखिला दिलाने वाली شریعتوں کے غور و فکر کی مشق، نام کا ورد، یہ ریاضت زبان کہی جاتی ہیں. زبان دنیاوی موضوعات کی جانب مائل خیالات کا بھی اظہار کرتی رہتی ہے، اسے اس طرف سے سمیٹ کر ذات مطلق کی جانب لگانا زبان سے وابستہ ریاضت ہے. اب من سے تعلق رکھنے والی ریاضت پر نظر ڈالیں.
मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते।
मन की खुशी, नर्म दिली, खामोशी, यानी माबूद के अलावा दूसरे मौजूआत की याद भी ना हो, मन पर काबू, बातिन की पूरी तहारत, ये मन से ताल्लुक रखने वाली रियाजत कही जाती है। मज़कूरा बाला तीनों यानी जिस्म, जबान और मन की रियाजत मिलाकर एक सालेह रियाजत है।
श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते।
समरे के चाहत के बगैर यानी बेगरज अमल के हामिल इंसानों के जरिए आला अकीदत के साथ की हुई मज़कूरा बाला तीनों रियाजतों को मिलाकर सालेह रियाजत कही जाती है। अब पेश है मलकात रद्दिया से ताल्लुक रखने वाली रियाजत।
सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्।
जो रियाजत खातिरदारी, इज्जत और इबादत के लिए या सिर्फ रियाकारी से ही की जाती है, वो गैर यकीनी और शोक समरा देने वाली रियाजत मलकात रद्दिया से ताल्लुक रखने वाली कही गई है।
मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारहितम्।
जो रियाजत जहालत के साथ हट से मन, जबान और जिस्मानी तकलीफ के साथ या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बदले के ख्याल से की जाती है, वो रियाजत मलकात मज़मूम वाली कही गई है। इस तरह सालेह रियाजत में जिस्म, मन और जबान को महज माबूद के मुताबिक ढालना है। मलकात रद्दिया से ताल्लुक रखने वाली रियाजत में रियाजत का तरीका वही है, लेकिन खुद सताइश इज्जत की ख्वाहिश से रियाजत करते हैं। आम तौर से मर्द कामिल लोग घर बार तर्क करने के बाद भी इस ऐब के शिकार हो जाते हैं। और तीसरी मलकात मज़मूम से ताल्लुक रखने वाली रियाजत गैर मुअय्यना तरीके से होती है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के नजरिए से होती है। अब पेश है सदका।
दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।
सदका देना ही फर्ज है, इस ख्याल से जो सदका मौका महल यानी वक्त के मुताबिक और मुस्तहिक शख्स के मिलने पर बदले में एहसान का ख्याल ना रखकर दिया जाता है, वो सदका सालेह कहा गया है।
यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दानम राजसं स्मृतम्।
जो सदका तकलीफ के साथ यानी जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है और बदले की उम्मीद से ये करूंगा तो ये मिलेगा यह समरे को मकसद बनाकर दिया जाता है, वो सदका मलकात रद्दिया से ताल्लुक रखने वाला कहा गया है।
अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्।
जो सदका बिना खातिरदारी किए या बेरुखी और हकारत के साथ नामुनासिब जगह और वक्त में गैर जरूरतमंदों को दिया जाता है, वो सदका मलकाते मजमूम वाला कहा गया है। काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे, हो ना अहल को सदका देने से सखी बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण का कौल है कि सदका देना ही फर्ज है। जगह, वक्त और अहल के हासिल होने के बदले में एहसान ना चाहने की नीयत से फराख दिली के साथ दिया जाने वाला सदका सालेह है। मुश्किल से दिया जाने वाला, बदले में समरे की नीयत से दिया जाने वाला सदका मलकात रद्दिया वाला सदका है। और बगैर खुलूस हकारत के साथ मौका महल के बरखिलाफ ना अहल को दिया जाने वाला सदका मलकात मजमूम वाला है, लेकिन है सदका ही। लेकिन जो घर बार कुल खानदान वगैरह सबकी उनसियत को तर्क कर वाहिद माबूद पर ही मुनहसिर है, उसके लिए सदके का उसूल इससे और ऊंचा है। और वो है सब कुछ की सुपुर्दगी, सारी ख्वाहिशात से अलग हटकर मन की सुपुर्दगी। जैसा कि श्री कृष्ण का कौल है, मैं ये व मना आधत्स्व, मेरे में ही मन लगाओ। लिहाजा सदका निहायत जरूरी है। अब पेश है ओम तत् और सत की शक्ल।
ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।
अर्जुन, ओम तत् और सत, ऐसा तीन तरह का नाम यानी ब्रह्मण, निर्देश, स्मृत, माबूद यानी ब्रह्मा की रहबरी करता है, याद दिलाता है, इशारा करता है और माबूद का मजहर है। उसी से पूरा, पहले यानी शुरू में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ वगैरह की तखलीक की गई है। यानी ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। इनका वजूद जोग से है, ओम के मुसलसल गौर फिक्र से ही इनकी तखलीक है, और कोई तरीका नहीं है।
तस्मादो मित्युदारित्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्।
लिहाजा हक परस्त लोग माबूद के अहकाम को कबूल करने वाले शरीयत के मुअय्यना तरीके से यज्ञ, सदका और रियाजत के आमाल का बर्ताव मुसलसल ओम नाम को तलफ्फुज करके ही शुरू करते हैं, जिससे उस माबूद की याद ताजा हो जाए। अब तत् लफ्ज का इस्तेमाल बताते हैं।
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः।
तत् यानी वो माबूद ही हर जगह मौजूद है। इस ख्याल से समरे की ख्वाहिश ना करके शरीयत के जरिए बताए गए तमाम तरह के यज्ञ, रियाजत और सदके के आमाल आला इफादे की ख्वाहिश करने वाले इंसानों के जरिए किए जाते हैं। तत् लफ्ज माबूद के मुतालिक ईसार की निशानी है, यानी विर्त तो ओम का कीजिए। यज्ञ, सदका और रियाजत के आमाल उस माबूद पर मुनहसिर होकर करें। अब सत के इस्तेमाल का मकाम बताते हैं।
सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते।
और सत यानी हक, जोग के मालिक ने बताया कि सत यानी हक है क्या। गीता की इब्तिदा में ही अर्जुन ने सवाल खड़ा किया था। फर्ज मनसबी ही दायमी है, बरहक है, तो श्री कृष्ण ने फरमाया, अर्जुन तेरे अंदर ये जहालत कहां से पैदा हो गई। सत यानी हक की तीनों दौर में कभी कमी नहीं होती, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत यानी बातिल का तीनों दौरों में वजूद नहीं है। दर हकीकत वो कौन सी चीज है जिसकी तीनों दौरों में कमी नहीं है। वो बातिल चीज है क्या जिसका वजूद नहीं। तो बताया, ये रूह ही हक है, और दुनिया के सारे जानदारों के अजसाम फानी हैं। रूह अबदी है, गैर मरई है, दायमी और लाफानी है, यही आला हक है। यहां फरमाते हैं सत यानी हक, ऐसे रूह मुतलक का ये नाम सद्भावे हक के मुतालिक एहसास में और नेक ख्याल में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐ पार्थ, जब मुअय्यना अमल सरापा अच्छी तरह होने लगे तब सत यानी हक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। सत के माने ये नहीं है कि ये चीजें हमारी हैं। जब जिस्म ही हमारा नहीं है तो उसके इस्तेमाल में आने वाली चीजें हमारी कब हैं? ये सत नहीं है। सत का इस्तेमाल सिर्फ एक माना में किया जाता है, नेक ख्याल में। रूह ही आला हकीकत है। इस सदाकत के मुतालिक लगाव हो, उसे हासिल करने के लिए नेक खुलूस हो, और उसको हासिल कराने वाला अमल ठीक से सादिर होने लगे, वहीं सत लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात पर जोग के मालिक इससे आगे कहते हैं,
यज्ञे तपसिदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते।
यज्ञ, रियाजत और सदका करने में जो मकाम हासिल होता है वो भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थियम, उस माबूद को हासिल करने के लिए किए जाने वाला अमल ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। यानी उस माबूद को हासिल करने वाला अमल ही सत्य है। यज्ञ, सदका, रियासत तो इस अमल के तकमीला हैं। आखिर में फैसला देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए अकीदत लाजमी है।
अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह।
अय पार्थ, बिला अकीदत के किया हुआ हवन, दिया हुआ सदका, तपी हुई रियाजत और जो कुछ भी किया हुआ अमल है वो सब असत यानी बातिल है, ऐसा कहा जाता है। वो ना तो इस दुनिया में और ना आलमे बाला में ही इफादी है, लिहाजा खुद सुपुर्दगी के साथ अकीदत बेहद जरूरी है। मग़्ज़ सुखन निष्कर्ष। बाप की इब्तिदा में ही अर्जुन ने सवाल किया कि बंदा नवाज, जो शरीयत में बताए गए तरीके को तर्क कर और अकीदत के साथ यज्ञ करते हैं, यानी लोग आसेब दीगर दीगर की इबादत करते ही रहते हैं, तो उनकी अकीदत कैसी है? मलकात फाजिला वाली है, मलकात रद्दिया वाली है या मलकात मजमूम वाली? इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये इंसान अकीदत का पुतला है, कहीं ना कहीं उसकी अकीदत होगी ही। जैसी अकीदत वैसा इंसान, जैसी खसलत वैसा इंसान। उनकी वो अकीदत मलकात फाजिला, मलकात रद्दिया और मलकात मजमूम वाली तीन तरह की होती हैं। मलकात फाजिला की अकीदत मंद देवताओं को, मलकात रद्दिया की अकीदत मंद यक्ष यानी जो शोहरत बहादुरी अता करे, देवों यानी जो हिफाजत कर सके उसका पीछा करते हैं, और मलकात मजमूम की अकीदत मंद भूत परेत यानी आसेब के परस्तार होते हैं। शरीयत के तरीके से काली इन इबादतों के जरिए ये तीनों तरह के अकीदत मंद जिस्म में मौजूद तमाम मादे यानी अपने इरादों और दिल की दुनिया में मौजूद मुझ आलिमुल गैब को भी कमजोर करते हैं, ना कि इबादत करते हैं। उन सब को यकीनी तौर पर तू शैतान जान, यानी आसेब यक्ष देव और देवताओं की इबादत करने वाला शैतान है। देवताओं के मौजू को श्री कृष्ण ने यहां तीसरी बार उठाया है। पहले बाप साथ में उन्होंने कहा था कि अर्जुन, ख्वाहिशात ने जिनके इल्म का इगवा कर लिया है वही फासिदुल अक्ल दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं। दूसरी बार बाब 9 में उस सवाल को दोहराते हुए कहा, जो दूसरे दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं वो भी मेरी इबादत करते हैं, लेकिन उनकी वो इबादत गैर मुनासिब यानी शरीयत में मुकर्ररा तरीके से अलग है, लिहाजा वो खत्म हो जाते हैं। यहां बाब 17 में उन्हें दुनियावी खसलत वाला कहकर मुखातिब किया। श्री कृष्ण के अल्फाज में एक माबूद की ही इबादत का उसूल है। उसके बाद जोग के मालिक श्री कृष्ण ने चार सवाल खड़े किए, खुराक यानी आहार, यज्ञ, रियाजत और सदका। खुराक तीन तरह के होते हैं, सालेह इंसान को तो सेहत अता करने वाली, खसलत के मुताबिक पसंद आने वाली लजीज खुराक पसंद होती है। मलकात रद्दिया के हामिल इंसान को तल्ख, तीखी, गर्म, चटपटी, मसालेदार, बीमारियों को बढ़ाने वाली खुराक पसंद आती है। मलकात मजमूम के हामिल इंसान को झूठी, बासी और नापाक खुराक पसंद आती है। शरीयत में बताए गए तरीके से किए जाने वाले यज्ञ यानी जो इबादत के बातिनी अमल हैं, जो मन पर बंदिश लगाता है, समरे की उम्मीद से खाली वो यज्ञ सवाले है। घमंड व गुरूर को जाहिर करने वाला और समरे के ख्याल से किया जाने वाला वही यज्ञ मलकाते रद्दिया वाला है। और शरीयत में बताए गए तरीके से बिल्कुल अलग दुआ यानी मंत्र, सदका और बगैर अकीदत से किया हुआ यज्ञ मलकाते मजमूम वाला यज्ञ है। आला माबूद रूह मुतलक में दाखिला दिलाने वाली सारी सलाहियतें जिनके अंदर मौजूद हैं, उन मुर्शिदे कामिल की इबादत, खिदमत गुजारी और बातिनी तौर से अदम तशद्दुद, रहबानियत और तहारत की मुनासिबत से जिस्म को तपाना जिस्मानी रियाजत है। हक, खुशतर और इफादी बात बोलना रियाजत जबान है। और मन को अमल में लगाकर रखना माबूद के अलावा मौजूआत गौर फिक्र में मन को खामोश रखना मन से वाबस्ता रियाजत है। मन, जबान और जिस्म तीनों को मिलाकर इस जानिब तपाना सालेह रियाजत है। मलकाते रद्दिया वाली रियाजत में ख्वाहिशात के साथ उसी को किया जाता है, जबकि मलकाते मजमूम वाली रियाजत शरीयत के तरीके से अलग अपनी मर्जी पर मुनहसिर है। अपना फर्ज मानकर मौका महल और अहल का ख्याल करके अकीदत से दिया गया सदका सौले है। किसी फायदे की लालच में मुश्किल से दिया जाने वाला सदका मलकाते रद्दिया वाला है। और झिड़क कर ना अहल को दिया जाने वाला सदका मलकाते मजमूम का हामिल है। ओम, तत् और सत की शक्ल बताते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बयान किया कि ये नाम माबूद की याद दिलाते हैं। शरीयत के तरीके से मुअय्यन रियाजत, सदका और यज्ञ की इब्तिदा करने में ओम का इस्तेमाल होता है। और तकमिले में ही यानी पूरा होने के बाद ही ओम पीछा छोड़ता है। तत् का माना है वो रूह मुतलक, उसके लिए वक्फ होकर ही वो अमल सादिर होता है। और जब अमल तसलसुल के साथ होने लगे तब सत का इस्तेमाल किया जाता है। याद इलाही ही सत है। सत के लिए ख्याल और नेक खुलूस में ही सत का इस्तेमाल किया जाता है। माबूद से निस्बत दिलाने वाले अमल, यज्ञ, सदका और रियाजत के समरे में भी सत है, लेकिन इन सब के साथ अकीदत का होना लाजमी है। अकीदत से मुबर्रा होकर किया हुआ अमल, दिया हुआ सदका, तपी हुई रियाजत ना इस जन्म में इफादा पहुंचाने वाली है ना अगली पैदाइशों में ही। अकीदत का होना हर हालत में लाजमी है। पूरे बाब में अकीदत पर रोशनी डाली गई और आखिर में ओम, तत् और सत की मुफस्सिल तफसीर पेश की गई जो गीता के श्लोकों में पहली बार आई है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रेय विभाग योग नाम सप्तदशोध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में अकीदत ओम तत् सत बाब जुज जोग नाम का 17वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्यायः। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गणानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में अकीदत ओम तत् सत बाबे जुज जोग यानी श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत।